आज है 10 फरवरी दिन रविवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक की गोली मारकर हत्या।
टीएमसी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि बीजेपी इस हत्याकांड के पीछे हो सकता है, जबकि बीजेपी ने स्वाभाविक रूप से इस आरोप को नकार दिया है।
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से बुझे कई घरों के चिराग।
सरकार को सब पता है कि कौन ऐसी शराब बना रहा है।
मध्य प्रदेश में गौ हत्या के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने पर कांग्रेस नेताओं ने भी कमलनाथ सरकार पर उठाए सवाल।
मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि लोगों ने ये सरकार इस बात के लिए बदली है कि ये सरकार सबको न्याय देगी, तो न्याय मिलना चाहिए।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत बिस्वास की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सत्यजीत बिस्वास सरस्वती पूजा के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। टीएमसी ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया है, जबकि बीजेपी ने इस हत्या के लिए टीएमसी में चल रही भीतरी खींचतान को प्रमुख वजह बताया है। सत्यजीत बिस्वास बांग्लादेश सीमा से सटे कृष्णगंज विधानसभा सीट से विधायक थे। अमरीकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगी। उन्होंने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। वे डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अपना नामांकन भरेंगी। एक रैली में उन्होंने कहा कि चुनाव में वे भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाएंगी, साथ ही उन तमाम पहलुओं पर जोर देंगी जिन पर ट्रंप प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, व्हाइट हाउस में इस वक्त जो शख्स मौजूद है वह अकेला सभी गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं है, वे तो इस खराब व्यवस्था में बस सबसे ताज़ा उदाहरण हैं, जिसके चलते अमेरिका सिर्फ अमीर लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। इसलिए यह मान लेना कि ट्रंप के चले जाने से सभी बुराइयां चली जाएंगी, यह पूरा सच नहीं है। हमें अमेरिका में बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। ये थे अमरीकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन के शब्द। पेरिस में चल रहा येलो वेस्ट प्रदर्शन लगातार 13वें शनिवार को भी जारी रहा। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मध्य पेरिस की तरफ मार्च कर रहे हैं, वहीं पुलिस भी इन प्रदर्शनकारियों पर करीबी नज़र बनाए हुए है। फ्रांस के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन की खबरें मिली हैं। कुछ जगहों पर पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग भी किया है। फ्रांस में लोग राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वे तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी ओलिवर ने कहा,
des décennies maintenant que nos élus ils n'œuvrent pas dans l'intérêt du peuple.
हम बीते कई दशकों से यह देख रहे हैं कि जिन नेताओं को हम चुनते हैं वो हमारे भले के लिए काम नहीं करते, वे सिर्फ अपने हित और अपनी लॉबी के लिए काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें स्पष्ट लोकतंत्र चाहिए। ये थे फ्रांस के एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर पूर्वी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों के नेतृत्व वाले समूह ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई की घोषणा कर दी है। इराकी सीमा के पास इस छोटे से इलाके में अभी भी जिहादियों का कब्जा है। एसडीएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान को शुरू करने से पहले इलाके में मौजूद 20,000 से अधिक आम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बाहर निकाल दिया गया था। पाकिस्तान की जांच एजेंसी ने बताया है कि उन्होंने देश के एक जाने माने पत्रकार को सरकार विरोधी टिप्पणियां करने की वजह से गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि रिजवान राजी नामक वरिष्ठ पत्रकार देश की न्याय व्यवस्था और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां लिखते थे, जिसकी जाँच की गई और फिर उनकी गिरफ्तारी की गई। वहीं राजी के परिवार ने बताया है कि लाहौर में स्थित उनके घर के बाहर कुछ अज्ञात लोग आए और उन्होंने जबरदस्ती मारपीट कर उन्हें कार में बैठाकर ले गए। थाईलैंड में होने वाले प्रधानमंत्री चुनाव के लिए राजकुमारी की दावेदारी को निरस्त करने के राजा के फैसले को प्रमुख विपक्षी दल थाई रक्षा चार्ट ने स्वीकार कर लिया है। यह दल पूर्व प्रधानमंत्री थाक्सिन शिनवात्रा के साथ गठबंधन में शामिल है। थाक्सिन शिनवात्रा की तरफ से ही राजकुमारी को प्रधानमंत्री का दावेदार नियुक्त किया गया था। चीन में चल रहे वीगर मुसलमानों के कैंप में एक प्रसिद्ध वीगर संगीतकार की मौत हो गई है। कार्यकर्ताओं के अनुसार अब्दुल रहीम हेयित नामक यह संगीतकार चीन के पश्चिम में बसे शिनजियांग इलाके में 8 साल की सजा काट रहे थे। उनके परिजनों ने उनकी मौत की वजह उनको दी जाने वाली प्रताड़ना बताया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का शक जाहिर किया है, लेकिन बीजेपी ने इसे तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बताया है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारी सहयोगी भूमिका राय ने कोलकाता में बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली से बात की।
देखिए, मामला ये है कि शनिवार सुबह से पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा का लगन लग चुका है और शाम को माजदिया एरिया में, जो नदिया जिले में है, बांग्लादेश की बॉर्डर सीमा के सटे हुए इलाका है, तो माजदिया में गए थे सत्यजीत विश्वास एक सरस्वती पूजा के उद्घाटन करने के लिए। तो वहाँ हजारों लोग मौजूद थे और जब पूजा के उद्घाटन के बाद वो मंच के नीचे आ गए थे और कुछ लोगों से बात कर रहे थे, अचानक गोली चली। उनके साथ में जो लोग थे तो उनको पहले पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, उनको अचानक एक आवाज सुनाई दी और फिर वो देखे कि सत्यजीत विश्वास जमीन पर गिर पड़े हैं और उनके सर से खून निकल रहा है। और अस्पताल ले जाने के बाद जो कृष्णनगर है नदिया जिले का जिला सदर, वहां के शक्ति नगर अस्पताल में जब ले जाया गया तब उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। हजारों लोग वहां मौजूद थे और उस वक्त राज्य के एक मंत्री रत्ना घोषकर वो भी मौजूद थी और वो बोल रही थी कि वहां से घटना स्थल से निकलने के तुरंत बाद ही उनको पता चला कि ये कांड हो गई है।
अमिताभ जी, इस हत्या पर टीएमसी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है अभी तक?
टीएमसी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि बीजेपी इस हत्याकांड के पीछे हो सकता है, जबकि बीजेपी ने स्वाभाविक रूप से इस आरोप को नकार दिया है और कहा है कि टीएमसी के दो गुटों के बीच जो क्लैश चल ही रहा था कई दिनों से, कई महीनों से, तो उसी का सिलसिला है ये हत्याकांड। और ये भी बता दें कि नदिया ऐसे एक जगह है जहां ममता बनर्जी खुद जाकर के भी कुछ दिन पहले ये चेतावनी दी थी कि तृणमूल कांग्रेस के जो अंदरूनी झगड़ा है वो लोग खत्म करे, जो ग्रुप्स बन गई है उनके बीच जो झगड़ा चल रहा है वो खत्म कर दिया जाए, ये चेतावनी खुद ममता बनर्जी ने दी थी।
तो आपको क्या लगता है, टीएमसी के एमएलए की हत्या की गई है, इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति क्या और गर्मा जाएगी?
देखिए, चुनाव से पहले तो कई दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्माती जा रही है। ममता बनर्जी पिछले हफ्ते धरने पर बैठ गई थी, एक मुख्यमंत्री होने के नाते भी जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के घर तक पहुंच गई थी सीबीआई। कई जिलों में ऐसे घटना तो घट रही है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के दोनों में आपस में टक्कर चल ही रहा है, पर खासकर नदिया जिला इसी चीजों से बाहर थे क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही शांत इलाका है, चैतन्य देव का जन्म स्थान भी है ये नदिया जिला, और यहाँ ऐसी घटना पहले कभी घटी नहीं।
पश्चिम बंगाल में कृष्णगंज से तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजीत विश्वास की गोली मारकर हत्या, जानकारी दे रहे थे कोलकाता से अमिताभ भट्टाशाली। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कम से कम 46 और उत्तराखंड में कम से कम 14 लोगों की जान गई है। विपक्षी दलों ने इन राज्यों में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर सरकार की आलोचना की है। लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
सहारनपुर में पिछले 3 दिनों से शुरू हुआ मौत का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। पड़ोस के इलाके से जहरीली शराब पीकर लोग जब एक एक कर बीमार होते गए और फिर लोगों की मौत होती गई तो प्रशासन भी हरकत में आ गया। राज्य के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी दोषी बचेगा नहीं।
जिम्मेदारी जो है इसमें ऊपर के लेवल की भी निर्धारित की जाएगी। अभी हमने जिला आबकारी अधिकारी दोनों जगह वहाँ पर सस्पेंड हो गए हैं और जो थाना इंचार्ज हैं वो भी वहाँ सस्पेंड हो गए हैं। नीचे के निरीक्षक और इंस्पेक्टर और वो सब तो सस्पेंड होंगे। FIR जो है उसमें 60 एक्साइज एक्ट में करने के लिए हमने कहा है, जिसमें फांसी की सजा है।
बताया जा रहा है कि सहारनपुर से सटे उत्तराखंड के रुड़की कस्बे से कई गांवों के लोग एक दावत खाकर आ रहे थे और वहीं लोगों ने शराब भी पी थी और उनके जरिए अन्य लोगों को भी ये शराब मिली थी। पहले दिन 27 लोगों की मौत हुई और फिर शनिवार तक मृतकों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई। हालांकि संख्या को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। सहारनपुर के जिलाधिकारी आलोक पांडे का कहना था।
डॉक्टर्स का कहना यह है कि 35 केस के लगभग 35 या 36 केस ऐसे हैं जो क्लियर कट केस हैं और उनमें अल्कोहल कंजम्पशन के चलते मृत्यु हुई है। बाकी केसेस में जब तक विसरा की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक क्लियर ये कहने में वो असर्टेन नहीं कर सकते हैं कि ये अल्कोहल से ही डेथ हुई है।
जबकि शाम को राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में मृतकों की संख्या 36 ही बताई गई। वही शनिवार को राजनीतिक दलों के नेताओं का संवेदना जताने के लिए पीड़ितों के गांवों में जाने का सिलसिला भी जारी रहा। सपा नेता अखिलेश यादव ने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है।
जान हो सकता ज्यादा जाए क्योंकि लोगों को लालच सरकार ने ये दिया है कि गाय की सेवा अच्छी तब होगी जब आप शराब ज्यादा पियेंगे। बढ़ाना चाहती पीने वाले लोगों को और सरकार को सब पता है, सरकार को सब पता है कि कौन ऐसी शराब बना रहा है।
जबकि घटनास्थल पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का कहना था कि ये संख्या 100 के पार भी जा सकती है।
कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जो है मरीज जो है वो मेरठ लाए गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनके पोस्टमार्टम को लेकर वहाँ पर शोर हो रहा है। कुछ सहारनपुर से अभी निकल चुके और आने वाले हैं और आसपास के इलाके में भी ये घटनाएं बढ़ रही हैं और लगता है कि ये टोल जो है 60-70 तक पहुंच गया है और भी ऐसी कई मौतें सामने आने वाली हैं, शायद सैकड़े तक जाएगी।
वहीं केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने इस मामले में सियासत न करने की सलाह दी।
इसमें जिसकी भी चूक रही होगी ये अच्छी हरकत नहीं है, अच्छी घटना नहीं हुई है, दुखदाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस पर राजनीति करना, किसी मौत पर राजनीति करना कि सरकार योगी सरकार इतने अच्छे काम कर रही है, एक दुर्घटना हुई है, नहीं होनी चाहिए।
इस बीच शराब के सेवन से बीमार पड़े दर्जनों लोगों का मेरठ मेडिकल कॉलेज के अलावा सहारनपुर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। दो दिन पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी जहरीली शराब की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई थी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उधर राजस्थान में आरक्षण के लिए आंदोलित गुर्जर समुदाय और सरकार के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। आंदोलन की वजह से दिल्ली मुंबई रेलमार्ग प्रभावित हुआ है। जयपुर से हमारे सहयोगी नारायण बारेट की रिपोर्ट सुनिए।
वे अपने आराध्य देव नारायण के जयकारे लगाते हुए आए और रेल मार्ग पर पड़ाव डाल दिया। गुर्जर समुदाय अपने लिए 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। इस आंदोलन से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित हो गया। रेलवे के अनुसार कोई 20 से ज्यादा गाड़ियों का मार्ग बदलना पड़ा है जबकि कुछ रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी है। गुर्जर समुदाय के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कहते हैं,
पहले मैं इनसे आंदोलन की कहता था लेकिन इस बार इन्होंने मुझसे बार बार आंदोलन की कही है और मैं यहाँ नहीं आया हूँ बल्कि ये क्राउड मुझे लेके आई है।
पिछले 13 साल में यह छठा मौका है जब गुर्जर समुदाय इस मुद्दे को लेकर आंदोलन पर उतरा है। इससे पहले पूर्ववर्ती BJP सरकार और कांग्रेस सरकारों ने आरक्षण के प्रावधान तो किए लेकिन वो कानूनी भंवर में फंस गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति की अपील की है। गहलोत कहते हैं यह मुद्दा केंद्र सरकार से जुड़ा है।
शांति बनाए रखे, वैसे स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर जो फैसले होने थे वो हो चुके हैं। अब तो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है 10% EBC का, उस रूप में कोई अगर SBC का कोई सोच होता है केंद्र का तो पार्लियामेंट भी संशोधन हो सकता
है
संविधान।
यह हालात की नजाकत है कि सरकार ने अपने 3 मंत्रियों की कमेटी को गुर्जर नेताओं से बातचीत का काम सौंपा है। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी नीरज के पवन को लगाया गया है। इन मंत्रियों में से एक पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह नीरज पवन के साथ रेल पटरियों पर गए और बातचीत की लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। गुर्जर नेताओं से मिलकर लौटे अधिकारी नीरज पवन कहते हैं,
राज्य सरकार बहुत गंभीरता से इस विषय का समाधान करना चाहती है, दिल से चाहती है राज्य सरकार के वास्तव में इस विषय का स्थायी विधिक और परमानेंट सॉल्यूशन हो सके जिससे कि गुर्जर बंधुओं को जो उनकी डिमांड है उसका लाभ मिल सके।
प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। BJP के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी कहते हैं,
इसके कारण से जो अराजकता का वातावरण राजस्थान में खड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों को रेलवे ट्रैक रोकने के कारण से परेशानी हो रही है, आर्थिक रूप से भी काफी इसके कारण से भार केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर आने वाला है, इसे मुक्त होकर के बातचीत करें, उनको सुनिश्चित करें और आंदोलन के कोई समाधान निकालने का प्रयास।
पिछले एक दशक में गुर्जर कभी रेल पटरियों पर चले और कभी सड़कों पर कदम ताल की, लेकिन विडंबना यह है कि वे आरक्षण को लेकर वहीं खड़े हैं जहां से कभी चले थे, शायद इस बार मंजिल मिले। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
और अब रुख मध्य प्रदेश का, जहां कांग्रेस सरकार द्वारा गौहत्या के आरोप में 3 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के बाद अब पार्टी के नेता ही कमलनाथ सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी भोपाल से हमारे सहयोगी सूर्य नियाजी की रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खरखली गांव से गौ हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों पर रासुका लगाने पर अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एतराज जताया जा रहा है। तीन आरोपी नदीम, शकील और आजम को इस हफ्ते गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर दी गई। जिले के पुलिस अधीक्षक का तर्क था कि क्षेत्र संवेदनशील है, इस वजह से यह कार्रवाई की गई ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। लेकिन कांग्रेस के भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद ने पूरी कार्रवाई पर एतराज जताते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने जिले के कलेक्टर को हटाने की मांग के साथ ही इसके लिए SIT गठित करने की भी मांग की है, ताकि इस पर निष्पक्ष जांच की जा सके। आरिफ मसूद ने कहा,
देखिए ऐसी इसलिए आवश्यकता पड़ी कि कलेक्टर महोदय ने किसी के भी संज्ञान में लाए बिना एक तरफा निर्णय करा, और जो संवैधानिक हिसाब से बहुत गलत था। गलत ये था कि कोई भी घटना, हम ये कतई नहीं कह रहे कि गोवंश के नाम पर आपने क्यों कर दिया। बात सिर्फ इतनी है कि कोई ने हमारे खिलाफ एक आरोप लगाया तो कलेक्टर एक न्यायालय की भूमिका में रहता है। कलेक्टर को दोनों पक्ष को सुनना चाहिए था और दोनों पक्ष को सुनने के बाद फिर निर्णय लेना था। उन्होंने एक पक्षीय निर्णय लेकर ले लिया और नोटिस चिपका दिया, ये तो गलत बात है। ये अब मैं नहीं चाहता, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि लोगों ने ये सरकार इस बात के लिए बदली है कि ये सरकार सबको न्याय देगी, ये सरकार सबकी सरकार है, तो न्याय मिलना चाहिए और संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए।
कांग्रेस विधायक से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी रासुका लगाए जाने पर आपत्ति व्यक्त की है। उनका कहना है कि गौवध के मामले में रासुका लगाए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है।
मेरा मत यह है कि किसी भी प्रकरण में कानून की कौन सी धारा लगे ये पुलिस पर निर्भर करता है। फिर भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला, मैं नहीं समझता कि कोई गौ हत्या में कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला इसमें आता है। फिर भी जो कानून की धाराएं हैं उसमें ही काम होना चाहिए।
लेकिन खंडवा के बाद प्रदेश के आगरमालवा में गौवंश के अवैध परिवहन के दो आरोपियों पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई दो दिन पूर्व की गई है। पुलिस ने इन पर आदतन गौवंश के अवैध परिवहन को आधार बनाकर रासुका के तहत कार्रवाई की है। महबूब और रोडमल को गिरफ्तार कर पुलिस ने उज्जैन जेल भेज दिया है। हालांकि इन कार्रवाई को कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने आप को हिंदुओं के करीब दिखाने के लिए यह सब कर रही है, जिससे वह अपने ऊपर लगी हिंदू विरोधी छवि को हटा सके।
भोपाल से शुर नियाजी की रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में कल कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब पूर्वोत्तर के राज्यों में नागरिकता संशोधन बिल का लगातार विरोध हो रहा है। गुवाहाटी से हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा की रिपोर्ट सुने।
आज यही गौरवपूर्ण मुहूर्त असमवासी राजलोय मोर आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जोनाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम की एक जनसभा में अपने भाषण की शुरुआत असमिया भाषा में करते हुए जब लोगों का अभिनंदन किया, उस समय ही यह स्पष्ट हो गया था कि मोदी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर हो रहे विरोध पर भावनात्मक भाषण देने वाले हैं।
घुसपैठियों के लिए असम समेत देश के किसी भी हिस्से में कोई जगह नहीं है। जिस NRC को अमल में लाने से पुरानी सरकार बच रही थी, उस पर हमने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कार्रवाई की है।
लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी के ऐसे भाषण से क्या यहां हो रहा विरोध थम जाएगा? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार बैंकुंठ नाथ गोस्वामी ने BBC से कहा,
ये खत्म होने वाला नहीं है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ना, उसको विरोध में अभी भी है, आंदोलन चल रहा है। BJP के असम में भी पोजीशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बात मोदी समझता है, इसीलिए ज्यादा एग्रेसिव हो गया है।
नागरिकता संशोधन बिल को लेकर हो रहा विरोध केवल असम का मुद्दा नहीं है, बल्कि जिस कदर समूचे पूर्वोत्तर के जातीय संगठन इस बिल के खिलाफ लामबंद हुए हैं, उससे यहाँ की 25 लोकसभा सीटों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई कहते हैं,
मोदी के तो इंडिया में रुक जाएगा, असम में तो और भी रुक जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में भी रुक जाएगा। वो जो प्रॉमिस किया था नॉर्थ ईस्ट का, असम का भी जो प्रॉमिस किया था, जो सरकार में आने से बाद यहाँ से सब बांग्लादेशी हो डिपोर्ट कर देगा। आज सिटीजन अमेंडमेंट बिल, पहले बांग्लादेश को एक्सपेल करने को था, आज बांग्लादेश को आमंत्रित कर रहा है।
दो दिवसीय दौरे पर यहाँ आए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में असम के संत धर्म गुरुओं तथा जन नायकों को असमिया भाषा में प्रणाम कर लोगों को भावनात्मक तौर पर काफी प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा माहौल में ये कहना काफी मुश्किल है कि उनकी ऐसी कोशिशों से क्षेत्र में चल रहा विरोध थम जाएगा। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
भारत प्रशासित कश्मीर में बीते दिनों जवाहर टनल के पास हिमस्खलन के दौरान एक पुलिस पोस्ट बर्फ में दब गई थी, जहां अभी तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं और 2 लोगों को जिंदा निकाला गया है। कश्मीर में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
वो 3 नगर में फंस गए, हम 2 बच गए। दूसरे कमरे का मैंने दरवाजा तोड़ा डाला, हाथों से लातों से दरवाजा तोड़ा मैंने, फिर मैंने चिल्लाया।
ये थे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान गुलजार अहमद, जो गुरुवार को जवाहर टनल के पास हिमस्खलन की चपेट में आए थे और जिन्हें एक दूसरे जवान के साथ बचाव अभियान के दौरान जिंदा निकाला गया है। हिमस्खलन के बाद शुरू किया गया बचाव अभियान में शनिवार को भी पुलिस के एक जवान का मृत शव बरामद किया गया और इस तरह से अभी तक बर्फ में दबे 8 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। गुरुवार को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जवाहर टनल के पास हिमस्खलन होने के दौरान पुलिस का एक पोस्ट बर्फ में दब गया था, जिसमें पुलिस के 8 जवान और 2 कैदी भी शामिल थे। इस घटना के बाद बर्फ में दबे जवानों को निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया, जो शनिवार को समाप्त किया गया। जिला अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूनुस मलिक ने BBC को बचाव अभियान की जानकारी देते हुए बताया।
जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, तो कल शाम तक हमने 7 डेड बॉडीज वहां से रिकवर की और 2 को रेस्क्यू किया। एक तो मिसिंग था, तो उसको सुबह हमने उसकी बारी भी रिट्रीव कर ली।
घटना स्थल पर पहुंचने वाले एक स्थानीय मीडिया कर्मी खुर्शीद आलम बताते हैं कि जब उनके सामने 2 मृत शव बर्फ से निकाले गए तो वो मंजर बहुत ही डराने वाला था।
देखिए जी, वहाँ पे इवराज आए थे तो ऑलरेडी सभी लोगों ने जब सुना है तो हम भी पहुंचे वहाँ पे, उस मुकाम पे हम भी पहुंचे, तो वहाँ पे जो स्थिति बनी हुई थी, हालात जो बने थे, तो बिल्कुल गंभीर से हालात बने थे, क्योंकि सभी लोग के यहाँ पे जो बोलते कि आंख जो थे उसके बाद थे, सभी लोग जो वहाँ पे देख रहे थे कि कई लोगों को पहले ही जो निकाला गया था, जिनमें 2 SPO को निकाला गया था, वो तो बिल्कुल जिंदा थे, लेकिन जैसे नीम मर्दा हालात में उनको वहां से निकाला गया।
गुरुवार को पूरे कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई थी और अभी तक जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से 14 लोगों की जानें गई हैं। बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीते 4 दिनों से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। राजमार्ग पर माल से लदे 2000 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं। वर्ष 1995 में जवाहर टनल के पास हिमस्खलन से कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि वर्ष 2005 में जिला कुलगाम के वालटंगुनार इलाके में हिमस्खलन से करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी। ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी को ठंड ने फिर से अपनी चपेट में लिया है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
और अब बारी है पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा की। आलेख BBC संवाददाता इकबाल अहमद का, सुनिए नवीन नेगी की जुबानी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते पनामा लीक्स मामला, पाकिस्तानी विदेश मंत्री का ब्रितानी दौरा और अफगानिस्तान शांति वार्ता से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। सबसे पहले बात पनामा लीक्स मामले की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पनामा लीक्स मामले में शामिल दूसरे लोगों को भी बेनकाब किया जाएगा। अखबार जंग के मुताबिक पाकिस्तान के नौकरशाहों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि पनामा लीक्स में शामिल 250 से ज्यादा लोग टैक्स में छूट ले चुके हैं और इससे जुड़ी ज्यादातर कंपनियां चीन शिफ्ट कर दी गई हैं। इमरान खान ने कहा कि पनामा लीक्स में शामिल 175 लोगों को तलाश ही नहीं किया जा सका और 78 लोगों के बारे में अधूरी जानकारी थी, जिनकी तलाश के लिए सरकारी एजेंसियों की मदद लेने का फैसला किया गया है। लंदन के दौरे पर गए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अपने सबूत पेश करेगा। पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाए गए कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में चल रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान 19 फरवरी को ICJ के सामने अपने सबूत पेश करेगा। अखबार एक्सप्रेस के मुताबिक विदेश मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है, वो हमारी धरती पर पकड़ा गया है, उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को अंजाम देने की बात कबूल की है। अखबार के अनुसार शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनके लंदन दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत प्रशासित कश्मीर के मसले को उजागर करना था। कुरैशी के अनुसार पाकिस्तान ने ब्रितानी संसद में कश्मीर के मामले को पूरी मजबूती से उठाया है और ब्रितानी सांसदों ने भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के रवैये का समर्थन किया है। भारत से रिश्तों के बारे में कुरैशी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के पास बातचीत के सिवा समस्या का कोई समाधान नहीं है। अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए तालिबान और अमरीका से बातचीत हो रही है। अखबार दुनिया में एक लेख छपा है जो इस बात का जिक्र करता है कि आखिर पाकिस्तान ने तालिबान को बातचीत के लिए कैसे तैयार कर लिया। इस लेख के मुताबिक तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के कई रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको गिरफ्तार कर पाकिस्तान ने तालिबान पर दबाव डाला कि वो अमरीका और अफगानिस्तान सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। लेख में एक गोपनीय वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अमरीका कुछ भी नहीं कर सकता था।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा सुन रहे थे आप और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
अभी एक मैच और बाकी है और 1-1 सीरीज का हो चुका है तो आई होप सो के जिस तरह से हम डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं गेम में तो उसी तरह से बॉलिंग डिपार्टमेंट और बैटिंग डिपार्टमेंट में तीसरे मैच में भी कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे और ये सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे।
ये शब्द हैं भारत के तेज गेंदबाज खलील अहमद के और नजरें आज हैमिल्टन में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को मात देकर सीरीज 2-1 से जीतने पर। लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी दूसरे मैच में मिली हार को भूलकर पलटवार करने की कोशिश करेगा। आखिरकार दांव पर सीरीज है। आज के मैच के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों का लंबा विदेशी दौरा भी समाप्त हो जाएगा। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज तो जीती ही एक दिवसीय सीरीज भी अपने नाम की। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी में अगर भारत जीता तो ये एक बेहद शानदार विदेशी दौरा साबित होगा। भारत के लिए खुद कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन की सलामी जोड़ी कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब जब उनके बल्ले से चौके छक्कों की बरसात होती है तब तब भारत का काम आसान हो जाता है। रोहित शर्मा तो 2020 क्रिकेट में छक्कों का शतक भी पूरा कर चुके हैं। ऋषभ पंत और बेहद अनुभवी महेंद्र सिंह धोनी ने भी पिछले मैच में अपना दमखम दिखाया और टीम को जिताकर ही वापस लौटे। गेंदबाजों ने भी अपनी भूमिका सही तरह से निभाई है तभी तो आत्मविश्वास से भरे स्पिनर करुणाल पांड्या कहते हैं,
हमारे पास सब कुछ है जो एक टीम को चाहिए, बैटिंग डेप्थ बॉलिंग ऑप्शन।
खैर जो भी हो आज एक बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। जो टीम जीतेगी उसके लिए आज का दिन सुपर संडे साबित होगा। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी आज ही न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा और आखिरी 2020 मुकाबला खेलेगी। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने पहला मैच 23 रन से और दूसरा मैच 4 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में पहले ही 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। लिहाजा वो क्लीन स्वीप और भारतीय टीम जीत कर सांत्वना हासिल करने की कोशिश करेगी। उधर भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन और शशि कुमार मुकुंद कल चेन्नई ओपन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। गुणेश्वरन को ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू हैरिस ने 6-4 3-6 6-0 से और शशि कुमार मुकुंद को फ्रांस के क्वारंटीन माउटेट ने 3-6 6-4 6-2 से हराया।
चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत बिस्वास की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। सत्यजीत बिस्वास सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। अमरीकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगी। उन्होंने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। पेरिस में चल रहा येलो वेस्ट प्रदर्शन लगातार 13वें शनिवार को भी जारी रहा। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मध्य पेरिस की तरफ मार्च कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों के नेतृत्व वाले समूह ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई की घोषणा कर दी है। चीन में चल रहे वीगर मुसलमानों के कैंप में एक प्रसिद्ध वीगर संगीतकार की मौत हो गई है। अब्दुल रहीम हेयत नामक यह संगीतकार शिनजियांग इलाके में 8 साल की सजा काट रहे थे। बीबीसी समाचार।
नवीन नेगी के साथ संदीप सोनी को अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत लेकिन bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।